एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम झांक रहे हैं 18वीं सदी के एक ऐसे आईने में जो आज भी हमें हमारा ही अक्स दिखाता है। कभी बौना, कभी दैत्य, कभी कभी तो हैवान भी।
हाँ, हम बात कर रहे हैं जोनाथन स्विफ्ट के विश्व प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास गुलिवर की यात्राएं।
और ये सिर्फ समुद्री यात्राओं और अजूबों का किस्सा भर नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं। स्विफ्ट जो एंग्लो आयरिश पादरी थे और अपने समय के शायद सबसे तीखे व्यंग्यकार, उन्होंने इस कहानी के जरिए अपने दौर की राजनीति, समाज, विज्ञान और सबसे बढ़कर इंसान के अपने स्वभाव पर जबरदस्त चोट की है।
उनका नजरिया काफी संशयवादी था, कहा जाता है।
हाँ, कुछ हद तक मानव द्वेषी भी कह सकते हैं, और ये उनके लेखन में मतलब साफ झलकता है।
तो ये किताब जो 1726 में प्रकाशित हुई थी, ऊपरी तौर पर तो बच्चों की कहानी सी लगती है। कई बार इसके छोटे संपादित संस्करण भी मिलते हैं।
हाँ, मिलते हैं, लेकिन इसकी असलियत वो कहीं ज्यादा गहरी है, और सच कहूं तो बेचैन करने वाली भी।
ये ऑगस्टिन युग की एक महत्वपूर्ण रचना तो है ही, पर ये सवाल बड़े गहरे पूछती है, जैसे हम इंसान आखिर हैं क्या?
क्या हम तर्क और विवेक के पुतले हैं, या बस थोड़ी बेहतर शक्ल सूरत वाले जंगली जानवर?
हाँ, यही सवाल। तो आज की हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द रहेगी, लेम्यूल गुलिवर की चार अविश्वसनीय यात्राओं के माध्यम से।
और हमारा गाइड है लेम्यून गुलिवर, एक जहाज का सर्जन।
बिल्कुल आम सा पढ़ा लिखा अंग्रेज लगता है शुरुआत।
हाँ, जो अपनी यात्राओं से पहले अपने समाज और सभ्यता पर काफी गर्व करता है, लेकिन जैसे जैसे वो नई दुनियाएं देखता है, उसका ये गर्व, ये विश्वास, वो टूटता जाता है
और वो एक गहरे मोहभंग का शिकार हो जाता है।
बिल्कुल।
और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम पूरी कहानी गुलिवर की नजरों से देखते हैं, और वो एक जिसे कहते हैं अविश्वसनीय कथावाचक।
हाँ,
या अनरिलायबल नरेटर।
हाँ, मतलब उसकी समझ अक्सर सीमित होती है। कभी कभी वो चीजों को गलत समझता है या अपने पूर्वाग्रहों से देखता है।
और स्विफ्ट इसी का फायदा उठाकर व्यंग को और तीखा बनाते हैं। पाठक को खुद सोचना पड़ता है, परतों के नीचे झांकना पड़ता है।
सही कहा। तो चलें पहली यात्रा पर।
हाँ जरूर। कहाँ से शुरू होती है कहानी?
कहानी शुरू होती है एक समुद्री तूफान से। गुलिवर का जहाज डूब जाता है और वो बेचारा किसी तरह तैरकर एक अनजाने द्वीप के किनारे पहुंचता है।
और जब होश आता है,
तो पाता है कि वो हिल भी नहीं सकता। हजारों पतले धागों से उसे जमीन से बांध दिया गया है।
हजारों धागों से?
हाँ, और उसके सीने पर चढ़कर एक नन्ना सा, मतलब महज 6 इंच का आदमी भाषण दे रहा है। ये है लिलिपुट का देश।
6 इंच का आदमी, सोचिए वो नजारा। गुलिवर उनके लिए एक मैन माउंटेन जैसा होगा, एक चलता फिरता पहाड़।
बिल्कुल। उसे लगता भी है कि वो यहाँ कितना शक्तिशाली है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि इन नन्हे लोगों के दिल और दिमाग की क्षुद्रता, उनके झगड़े, उनकी राजनीति, वो कितनी विशाल है।
हाँ, सुना है वहां की राजनीति भी अजीब है, जैसे वो ऊंची एड़ी और नीची एड़ी वाले जूते।
अरे हाँ, दो पार्टियां हैं, ट्रायमैक्सन जो ऊंची एड़ी पहनते हैं और स्लैमैक्सन जो नीची एड़ी वाले। ये इंग्लैंड के टोरी और विग दलों पर सीधा कटाक्ष है।
और धार्मिक मुद्दा तो और भी अजीब है।
हाँ, अंडे को किधर से तोड़ा जाए, बड़े सिरे से या छोटे सिरे से, इस पर बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस में भयानक दुश्मनी है।
ये तो कमाल है, मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संघर्षों का मजाक इस तरह से।
स्विफ्ट यही दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी राजनीति और धार्मिक बहसें कितनी निरर्थक हो सकती हैं। जैसे इंग्लैंड के बड़े बड़े नेता और धर्माधिकारी भी इन्हीं लिलीपुटियनों की तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं।
और गुलिवर, वो क्या करता है वहाँ? वो अपनी ताकत के नशे में पहले तो उनका मोहरा बनता है, उनके दुश्मन ब्लेफुस्कू का जहाजी बेड़ा खींच लाता है।
अच्छा।
लेकिन फिर वो दरबारी साजिशों में फंस जाता है, उस पर राजद्रोह का आरोप लगता है।
राजद्रोह का, उस मैन माउंटेन पर?
हाँ, और उसे पता चलता है कि सजा के तौर पर उसकी आंखें निकालने की योजना है।
आंखें निकालने की? ये तो बहुत क्रूर है, इतना विशाल आदमी और सजा इतनी अपमानजनक।
विडंबना देखिए। खैर, वो किसी तरह ब्लेफुस्को भाग जाता है और वहां से एक नाव पाकर वापस इंग्लैंड पहुंचता है।
तो पहली यात्रा के बाद गुलिवर शक्तिशाली महसूस करता है, पर क्या उसने कुछ सीखा? क्या वो इन लोगों की क्षुद्रता को समझ पाया?
ये सवाल तो है। शायद वो अब भी अपनी यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम में ही है। स्विफ्ट यहाँ मानव अहंकार और सत्ता के खेल पर टिप्पणी कर रहे हैं, और गुलिवर इस खेल का अनजाने में ही सही हिस्सा बन जाता है।
तो फिर आती है दूसरी यात्रा, ब्रॉबडेनेगैग।
हाँ, और यहाँ पासा पूरी तरह पलट जाता है।
कैसे?
गुलिवर एक और समुद्री यात्रा पर निकलता है, जहाज रास्ता भटक जाता है, उसे पानी की तलाश में कुछ साथियों के साथ एक अनजान द्वीप पर उतारा जाता है, और वहां वो देखता है दानव।
दानव मतलब?
60-70 फीट लंबे इंसान। उसके साथी तो नाव लेकर भाग जाते हैं, लेकिन गुलिवर पीछे छूट जाता है। ये है ब्रॉबडेनेगैग का देश।
ओहो, तो लिलीपुट में वो पहाड़ था, यहाँ वो एक कीड़ा बन गया।
बिल्कुल, उसे एक किसान पकड़ लेता है। सोचिए, एक खेत में काम करने वाले दैत्य के हाथ में गुलिवर कैसा लग रहा होगा।
कल्पना करना भी मुश्किल है।
वो किसान उसे पहले तो घर ले जाता है, फिर पैसे कमाने के लिए उसका तमाशा दिखाने लगता है, जैसे कोई सर्कस का जानवर हो।
बेचारा गुलिवर, उसका जीवन तो अब हर पल खतरे में होगा।
हाँ बिल्कुल, एक विशाल चूहा उस पर हमला कर सकता है, बच्चे उसे खिलौने की तरह उछाल सकते हैं, एक मक्खी भी गिद्ध जितनी बड़ी लगती है।
फिर क्या होता है?
उसे रानी को बेच दिया जाता है, और वो महल में एक पालतू या मतलब एक कौतुक की वस्तु बनकर रहता है। एक गुड़िया घर में उसका बसेरा होता है।
कितनी लाचारी और अपमानजनक स्थिति है ये। उसका सारा घमंड तो मिट्टी में मिल गया होगा।
बिल्कुल, और इसी लाचारी के बीच उसकी मुलाकात होती है ब्रॉबडेनेगैग के राजा से।
राजा कैसा है?
राजा काफी समझदार और नैतिक व्यक्ति लगता है। गुलिवर बड़े गर्व से उसे अपने देश यूरोप की महानता के किस्से सुनाता है, वहाँ की राजनीति, कानून, युद्ध, हथियार, सब कुछ।
उसे लगता होगा राजा बहुत प्रभावित होगा।
हाँ, उसे यही लगता है। लेकिन राजा का जो जवाब है वो इस उपन्यास के सबसे प्रसिद्ध और चुभने वाले वाक्यों में से है।
क्या कहता है राजा?
वो गुलिवर की बातें सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी से मैं यही निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि तुम्हारे देशवासी प्रकृति द्वारा पृथ्वी की सतह पर रेंगने दिए गए सबसे हानिकारक घृणित छोटे कीड़ों की जमात लगते हैं।
ओ, ये तो सीधी चोट है।
हाँ, ये सिर्फ यूरोप की आलोचना नहीं, ये पूरी मानव जाति के दंभ पर, हमारी तथाकथित सभ्यता पर एक भयानक टिप्पणी है।
स्विफ्ट यहाँ परिप्रेक्ष्य की सापेक्षता का कितना अद्भुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एक जगह महान है वही दूसरी जगह घृणित कीड़ा।
बिल्कुल, और यही वो क्षण है जब गुलिवर के विश्व दृष्टि में पहली गहरी दरार पड़ती है। उसका मोह भंग यहाँ से तेजी से शुरू होता है।
फिर वो वापस कैसे आता है?
एक दिन रानी उसे समुद्र किनारे ले जाती है। गुलिवर अपने लकड़ी के बक्से नुमा घर में होता है, तभी एक विशाल चील उस बक्से को पंजों में दबाकर उड़ जाती है और समुद्र में गिरा देती है।
क्या?
हाँ, किस्मत से एक जहाज उसे देख लेता है और बचा लेता है, लेकिन इंग्लैंड लौटकर भी उसे अब सामान्य इंसान बौने और तुच्छ लगते हैं। उसका नजरिया बदल चुका है।
तो दो यात्राओं में उसने शक्ति और लाचारी दोनों के चरम देख लिए, अब तीसरी यात्रा कहाँ ले जाती है?
तीसरी यात्रा उसे ले जाती है बुद्धि और ज्ञान की दुनिया में, लेकिन वो दुनिया भी अजीब ही है। समुद्री डाकू उसे एक छोटी नाव में अकेला छोड़ देते, और तभी वो देखता है
आसमान में एक उड़ता हुआ द्वीप।
उड़ता हुआ द्वीप,
ये है लापूटा।
हाँ, ये है लापूटा। यहाँ के निवासी गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और संगीतज्ञ हैं। वो इतने अमूर्त विचारों में खोए रहते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई सुध ही नहीं।
मतलब?
उन्हें चलने फिरने या बात करने के लिए भी नौकरों की जरूरत पड़ती है, जो उनके कान पर हल्के से थपकी मारकर फ्लैपर से उनका ध्यान खींचते हैं। उनके घर टेढ़े मेढ़े, कपड़े बेढंगे, क्योंकि नापने वाले दर्जी भी जामिति में खोए रहते हैं।
हाँ हाँ, ये तो स्विफ्ट का उस समय की रॉयल सोसाइटी और कोरी बौद्धिकता पर व्यंग लगता है।
ज्ञान अगर व्यवहारिक जीवन से कट जाए तो कितना हास्यास्पद हो सकता है।
बिल्कुल।
फिर गुलिवर नीचे जमीन पर उतरता है बालनी बारबी में, वहाँ वो लगाडो की भव्य अकेडमी देखता है।
और वहाँ क्या चल रहा है?
अरे, वहाँ के प्रयोग तो और भी कमाल के हैं। कोई वैज्ञानिक खीरे से धूप निकालने की कोशिश कर रहा है।
खीरे से धूप?
हाँ, कोई मानव मल को वापस भोजन में बदलने की परियोजना पर काम कर रहा है। कोई भाषा को सुधार कर संज्ञाओं की जगह सीधे चीजें लेकर चलने का सुझाव दे रहा है।
गजब है, ये सब निरर्थक प्रयोग।
और ये सब तब हो रहा है जब बाहर देश कंगाली और भुखमरी का शिकार है। क्या विडंबना है। स्विफ्ट यहाँ विज्ञान और तथाकथित प्रगति पर ही सवाल उठा रहे हैं।
क्या हर शोध सार्थक होता है, या ये सिर्फ बुद्धि का विलास बन के रह जाता है?
यही सवाल है। इसके बाद गुलिवर कुछ और द्वीपों पर जाता है, ग्लबडबड्रिब, जहाँ वो जादूगरों की मदद से इतिहास के महान नायकों की आत्माओं से मिलता है।
और वहाँ क्या पता चलता है?
पता चलता है कि इतिहास की किताबें कितने झूठ से भरी हैं, महान समझे जाने वाले लोग असल में कितने नीच और भ्रष्ट थे।
तो इतिहास लेखन पर भी टिप्पणी है ये, कि कैसे सच को तोड़ मरोड़ दिया जाता है।
हाँ, फिर वो पहुंचता है लुगनैग, जहां उसकी मुलाकात होती है स्ट्रल्डबर्ग से।
स्ट्रल्डबर्ग, ये कौन है?
ये वो अभागे लोग हैं जो कभी मरेंगे नहीं, अमर हैं।
अमर? गुलिवर तो खुश हुआ होगा।
पहले तो बहुत उत्साहित होता है, सोचता है ये कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वे अमर तो हैं, पर बूढ़े और बीमार भी होते जाते हैं। अनंत काल तक उन्हें बुढ़ापे की सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं।
ओ।
शारीरिक और मानसिक पतन हमेशा के लिए। हाँ, वे समाज पर बोझ बन जाते हैं, उनसे सब नफरत करते हैं। ये अमरता की मानवीय इच्छा का कितना भयानक चित्रण है। जिसे हम वरदान समझते हैं वो यहाँ अभिशाप है।
इस पूरी तीसरी यात्रा में हम देखते हैं कि गुलिवर अब बदल रहा है, वो सिर्फ भोला दर्शक नहीं रहा।
हाँ, वो अधीर हो रहा है, आलोचनात्मक बन रहा है। इन निरर्थक बौद्धिक खेलों और झूठे इतिहास से वो ऊब चुका है, उसका मोहभंग और गहरा हो रहा है।
और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और शायद सबसे झकझोरने वाली यात्रा पर, हुनियमों का देश।
हाँ, ये वो यात्रा है जो गुलिवर को पूरी तरह बदल देती है, या कहें कि तोड़ देती है। उसके जहाज के क्रू मेंबर बगावत कर देते हैं और उसे एक अनजान तट पर फेंक देते हैं।
और वहां उसे कौन मिलता है?
वहां उसे दो तरह के प्राणी मिलते हैं। पहले हैं याहूज, जंगली, गंदे, लालची, कामुक, देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे पर व्यवहार में जानवरों से भी बदतर।
इंसानों जैसे?
हाँ, गुलिवर उन्हें देखकर घृणा से भर जाता है। फिर वो मिलता है हुइनमोन से।
हुइनम, ये कौन है?
ये समझदार, शांत, गुणी, बोलने वाले घोड़े हैं। वे इस देश के शासक हैं।
बोलने वाले घोड़े?
हाँ, और शासक।
हाँ।
उनका समाज पूरी तरह तर्क और सद्गुण पर आधारित है। उनकी भाषा में झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या जैसे शब्दों के लिए कोई जगह ही नहीं है।
कमाल है, तो गुलिवर उनके साथ रहना लगता है।
हाँ, वो उनकी भाषा सीखता है, उनके तर्क संगत और व्यवस्थित जीवन की बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन तभी उस पर वो भयानक सच उजागर होता है।
क्या?
जब वो एक तालाब में अपना अक्स देखता है तो उसे एहसास होता है कि शारीरिक रूप से वो हुइनमो जैसा नहीं बल्कि उन घृणित याहुओं जैसा है।
ओ, मतलब कपड़े हटा दिए जाएं तो उसमें और याहू में कोई फर्क नहीं।
बिल्कुल, ये एहसास उसे तोड़ देता है। वो अपने हुइनम स्वामी को मानव समाज के बारे में बताता है। हमारे युद्ध, हमारे वकील, डॉक्टर, सरकारें, हमारा लालच, हमारी बेईमानी, सब कुछ।
और उसका स्वामी क्या कहता है?
उसका स्वामी सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि इंसान तो याहू ही हैं, बस उनमें थोड़ी तर्क शक्ति आ गई है जिसने उन्हें अपनी स्वाभाविक बुराइयों को पूरा करने में और ज्यादा सक्षम और खतरनाक बना दिया है।
और गुलिवर?
और गुलिवर इस बात से पूरी तरह सहमत हो जाता है। वो अपनी ही प्रजाति मनुष्यों से नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि हुइनम ही आदर्श है, तर्क ही जीवन का सार है और इंसान मूल रूप से भ्रष्ट और घृणित है।
यहाँ स्विफ्ट हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने खड़ा करते हैं, है ना? क्या वाकई हुइनम आदर्श है? क्या भावनाओं, जुनून से पूरी तरह मुक्त, सिर्फ तर्क पर आधारित जीवन जीना संभव है या सही है?
क्या हुइनमों की अच्छाई भी कुछ हद तक ठंडी और निर्जीव नहीं है? और याहू, क्या वे हमारी दबी हुई पाशविकता का प्रतीक है? स्विफ्ट कोई आसान जवाब नहीं देते।
फिर गुलिवर का क्या होता है? क्या हुइनम उसे अपनाते?
नहीं, हुइनमों की सभा ये फैसला करती है कि गुलिवर जो है तो एक याहू ही, भले ही ज्यादा बुद्धिमान, उसका उनके बीच रहना प्रकृति के खिलाफ है। वे उसे बहुत शिष्टता से लेकिन दृढ़ता से निर्वासित कर देते हैं।
ये तो गुलिवर के लिए चुरांत चोट होगी। जिसे वो आदर्श मानता था उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया।
हाँ, उसका मानव द्वेष, मिसेंथ्रोपी, अब चरम पर है। वो पूरी तरह टूट चुका है।
क्या यही हश्र होता है जब आप दुनिया और इंसानियत को सिर्फ तर्क और ऊंचे आदर्शों की कसौटी पर कसते हैं? क्या आलोचनात्मक नजरिए की अति आपको इंसानियत से ही दूर कर देती है? ये भी एक सवाल उठता है।
बिल्कुल। उसे एक पुर्तगाली जहाज बचाता है जिसका कप्तान बहुत दयालु है, लेकिन गुलिवर अब किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे इंसानों की गंध से भी घिन आती है,
यहाँ तक कि अपने परिवार से भी।
हाँ, इंग्लैंड लौटकर वो अपनी पत्नी, बच्चों से भी नफरत करता है क्योंकि वे उसे याहू लगते हैं।
उसका अंत तो बहुत दुखद है।
हाँ, वो समाज से कट जाता है, अपना ज्यादातर समय अस्तबल में दो घोड़ों के साथ बिताता है, उनसे बातें करता है जैसे वे ह्यूवेनम हो। वो पूरी तरह से मानव जाति से विमुख हो चुका है।
इस पूरी कहानी को इतना प्रभावशाली बनाने के लिए स्विफ्ट ने व्यंग्य के कई हथियार इस्तेमाल किए हैं। अतिशयोक्ति तो हमने देखी, लिलीपुट और ब्रॉबडिंग नेक के आकार में।
हाँ, और पैरोडी भी है।
उस जमाने के यात्रा वृतांतों और वैज्ञानिक लेखों का मजाक उड़ाया है। विरंबना आयरनी तो कदम कदम पर है। गुलिवर अक्सर उन चीजों की तारीफ करता है जिनकी स्विफ्ट असल में आलोचना कर रहे होते हैं।
और प्रतीकवाद तो बहुत स्पष्ट है। लिलीपुटियन मतलब इंसानी शुद्रता,
ब्रॉबडिनेगियन मतलब नैतिक पैमाना,
हाँ।
हुइनम यानी तर्क का आदर्श, शायद कुछ ज्यादा ही अमानवीय आदर्श, और याहो हमारी पाश्विकता।
हाँ, और स्विफ्ट कई बार विभत्स या स्थूल बिंबों ग्रोटेस्क इमेजरी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे याहुओं की गंदगी या ब्रॉबलिनेक के लोगों की त्वचा का नजदीकी वर्णन, जो पाठक में एक तरह की वितृष्णा जगाता है।
हाँ, ये सब मिलकर व्यंग्य को बहुत शक्तिशाली और अविस्मरणीय बना देते हैं।
और पाठक की अपनी यात्रा भी गुलिवर जैसी ही होती है कुछ हद तक। शुरू में लिलीपुट के किस्से सुनकर शायद मजा आता है, एक कौतुक का भाव रहता है।
बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गुलिवर का मोह भंग बढ़ता है, पाठक भी असहज होने लगता है। ब्रॉबडिनेक के राजा के शब्द हमें चौंकाते हैं,
लापूटा की निरर्थकता हमें सोचने पर मजबूर करती है,
और चौथी यात्रा तो पाठक को झकझोड़कर रख देती है। याहुओं को देखकर और फिर गुलिवर की प्रतिक्रिया देखकर हमें अपनी ही इंसानियत पर सवाल उठाने पड़ते हैं, क्या हम भी भीतर से ऐसे ही हैं?
हाँ, ये किताब हमें हमारे आरामदायक भ्रमों से बाहर खींचती है और एक बेचैन करने वाले सच का सामना कराती है। शायद इसी ने ही आज भी इतनी शक्तिशाली है।
बिल्कुल, ये हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है। हमारी सभ्यता, हमारी नैतिकता, हमारी बुद्धि सब पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है।
तो अंत में अगर सोचें, ये लगभग 300 साल पुरानी किताब आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है?
शायद इसलिए कि मानव स्वभाव ज्यादा बदला नहीं है। स्विफ्ट हमें आज भी आत्ममुग्धता के खिलाफ चेताते हैं, अपनी मान्यताओं और अपने समाज पर लगातार सवाल उठाने की जरूरत याद दिलाते हैं।
और शायद ये भी याद दिलाते हैं कि सभ्यता का मुलम्मा कितना पतला हो सकता है, जिसके नीचे याहू जैसी प्रवृत्तियां हमेशा मौजूद रहती हैं।
हाँ, ये हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण के लिए उकसाती है। इंसान होने का सही मतलब क्या है और हम उस मतलब से कितने दूर हैं?
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्थ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।